نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مادم الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الخالق مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد انسان دو حالتوں میں ہمیشہ ہوتا ہے, پوری زندگی میں مشاہدہ کریں اپنا صبح سے شام تک تو دو حالتیں ہمیں پیش رہتی ہیں ہر وقت, ایک خوشی کی اور ایک غم کی. ان دو حالتوں کے علاوہ تیسری حالت انسان کے ساتھ مشکل ہی ہو. خوشی ہر وقت ملتی ہے انسان کو, تھوڑی ذرا سی بات ہو جائے, مثال کے طور پر آپ کو خبر آ جائے بھائی اچھی تو خوشی ہوگی, یا بہت بڑی خبر آ جائے وہ بھی خوشی ہوگی. اتنی میں خوش ہو جاتی ہے آدمی, آپ سودا لینے گئے آپ کو اپنی پسند کا سودا مل گیا بڑی خوشی ہوگی, آپ کسی چیز کے انتظار میں تھے انتظار آپ کا پورا ہو گیا خوشی ہوگی. دو ہی حالت انسان کی ہیں, خوشی کی بھی اعلیٰ درجے کی خوشی ہوتی ہے یا پھر غم انسان کو ہوتا ہے. دو حالات انسان کی زندگی کے ساتھ چلتے ہیں, کیوں ہیں؟ اس کا جواب تو پھر ایک ہی ہے کہ جو اللہ چاہے. اللہ نے یہ دو حالت انسان کو دی ہیں, خوشی کی اور غم کی, دونوں اللہ کی طرف سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون کچھ ایسا ہے بندے کے ساتھ کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو باطل ہو. اللہ پاک نے ہر چیز جو ہے بندے کے لیے مفید رکھی ہے. اب آپ کہیں گے غم میں کیا فائدہ انسان کے, کیسے مفید ہے, خوشی میں تو سمجھ آتا ہے. لیکن اللہ کی حکمت یہی ہے کہ خوشی سے بھی زیادہ غم میں اللہ پاک نے انسان کے لیے بہتری رکھی ہے. دیکھیں غم بھی اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور خوشی بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے, لیکن یہ ملنے کی والی چیز جو ہے یہ ضرور اس میں ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے بہت بہتر ہیں. ہم ان دونوں اوقات کو بہت بری طرح سے لٹاتے ہیں. حالانکہ بہت قیمتی چیزیں ہیں, بہت قیمتی چیزیں ہیں, دونوں حالتیں بڑی عظیم ہیں. اگر کوئی خوشی مل جائے ہمیں تو پھر دیکھیں جو پٹاخے اور جو پھلجڑیاں چھوڑتے ہیں اس میں جو حالت کرتے ہیں, بلکہ یہ کہ انتہا خوشی میں تو آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے. جتنی بڑی خوشی اللہ پاک دے دے اتنے بھول جاتا ہے, اتنی خلافات پکنا شروع کر دیتا ہے, غلط کام شروع کر دیتا ہے. عید بھی تو خوشی ہے نا, یہ نہیں خوشی. دیکھیے اتنا بڑا رمضان ہم گزارتے ہیں, عید آنے کے بعد عیدی کے دن ہی کام شروع ہو جاتا ہے ہمارا. ویسے نلائک ہیں ہم لوگ کہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو ہم غور نہیں کرتے, فکر نہیں کرتے. بجز ان لوگوں کے جو نیک انسان ہیں جو سمجھے ہیں اس واقعے کی دنیا ہے کیا چیز, وہ تفکر کرتے ہیں ان چیزوں پہ. خوشی ہے ہم سمجھیں بس یہ تو ہم نے کیا ہے, آج یہ بات خوشی ہو گیا فلاں خوشی ہو گیا, بلکہ اس پہ ایک اور तो नई नई चीज़ सालगराह बनाने बैठ जाते हैं, कोई फंक्शन बनाने बैठ जाते हैं, कोई उल्टी सीधी हरकतें हैं। वक्त भी, वक्त है ना हमारे पास, पैसा भी है, वक्त भी है और शैतान भी है, ये तीनों चीज़ें मिली हुई हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसे हिसाब करते हैं। हालांकि खुशी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरह गम की मामला, गम आ जाए तो उस पर भी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, ज़्यादा गम हो तो उसमें अल्लाह को भूल जाते हैं, छोड़ें जी क्या मामला था। ऐसे ऐसे लफ्ज़ इंसान की ज़बान से निकलना शुरू हो जाते हैं कि वो नमाजें छोड़ देते हैं, खुशी में भी नमाजें छोड़ देते हैं। खुशी हुई ना, शादी हो रही है, बहुत ब्याह हो रहा है, खुशी हुई, नमाजें ख़त्म, गजा हो गई, किसी को कुछ हो गया, खाना पीना ये वो ये दो वक्त, और ये हमारा गम का हालात है। गम कोई आ जाए भाई, अल्लाह की तरफ से हालात आ जाए इंसान की तरफ, ये थोड़ी मुसीबत आ जाए, बस ख़त्म, फिर वो भी चीज़ छोड़ चुका देते। हालत ये दो है तो बड़े ख़तरे वाले में पड़े, हालांकि ये दो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इंसान समझ जाए, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने समझा है कि ये दोनों बहुत दर्जे की इबादत है, बहुत दर्जे की इबादत है ये दोनों, टाइम और टाइम है ये दो इंसान के पास। अगर अल्लाह पाक ने जैसे कुरान में फरमाया है और प्यारे हबीब से हमने शहादत दी हैं, उनको हम गौर कर लें, फिक्र कर लें, या जिस तरह उलमा कराम हमें बताते हैं, समझाते हैं, उनकी बातों को गौर से सुने और समझें, तो हम फिर पागल ना रहें। गम हो गया सवाल के तौर पर, गम क्या चीज़ है, मुसीबत की शक्ल की आ गई, कई भी मुसीबत इंसान पे आ जाती है, ठीक है। तो अब उसमें क्या है, हम क्या करते हैं, पता है बहुत, पता ही कुछ नहीं हमें करना क्या है, समझिए कुछ नहीं उसमें क्या करें। अल्लाह का कुरान हमें क्या समझाता है, सुन लें गौर से, एक कलमा है सिर्फ, एक कलमा, उस कलमे को अदा कर दें तो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि उसके कितने अजर इनामात अल्लाह ने रखे हैं, तसव्वुर नहीं कर सकता। एक कलमा पढ़ लें, कोई मुसीबत है, परेशानी है, बीमारी है, जो हर वक्त है हमारे साथ, एक कलमा पढ़ ले आदमी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सब को खत्म, बच्चे बस ये कलमा हमने पढ़ना है अपनी मुसीबत में, तकलीफ में, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मिलता क्या अल्लाह की तरफ से, अब है तो बहुत हदीसें वक़ात हैं, लेकिन मैं इसमें एक दो आपको सुना देता हूँ, करने वालों के लिए बहुत ही काफ़ी है। एक हदीस है जिसमें अहमद में भी है, तिबरानी में भी है, इब्ने माजा में है, हाकिम में है, अबू अबैदा रदी अल्लाह ताला में इसको रवायत फरमा रहे हैं इस हदीस को। मैं एक दो हदीस सुना रहा हूँ आपको, हदीसें बहुत बड़ी अच्छी हदीसें, इस पर फरमाते हैं कि जब किसी मुसीबत में बंदा ये कलमा पढ़ लेता है तो अल्लाह पाक उसको फिलफौर इतना चीज़ अता फरमाते हैं कि इस दुनिया में और जो कुछ इस दुनिया में है, दुनिया और जो कुछ इस दुनिया में है, सबसे बेहतर होती है वो चीज़। अब्दा फरमाते हैं कि जैसे इंसान ये कलमा पढ़ लेता है किसी मुसीबत में, तो तीन चीज़ें अल्लाह की तरफ से उस पर वाजिब हो जाती हैं, तीन चीज़ें मुसीबत पर, तीन चीज़ें उसी वक्त वाजिब हो जाती हैं अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की तरफ से यानी अल्लाह देखा उस पर। कौन सी, नंबर एक, अल्लाह की रहमतों में नहा जाता है वो शख्स, नंबर दो अल्लाह पाक उसकी तारीफें शुरू कर देता है उस बंदे की, रहमतें और अल्लाह की तारीफें उसके साथ शुरू हो जाती हैं, अल्लाह के इनामत उतरना शुरू हो जाते हैं। ये इतने कम इंसान के साथ कितनी बड़ी चीज़ है दौलत अल्लाह ताला। और तीसरी चीज़ ये कि अल्लाह सुबहाना ताला उसका नाम हिदायत याफ्ता लोगों में लिख देते हैं, मुत्तकीन के अंदर उसका नाम चढ़ा दिया जाता है। आप बताएं, मुसीबत जो आई अल्लाह की तरफ से, जिसने पहचान लिया कि आई कहां से है, अल्लाह की तरफ से आई है, फौरन उसने कलमा पढ़ लिया। मुसीबत तो है, तीन चीजें उस पर एकदम अल्लाह पाक की तरफ से नाजिल हो जाती है। एक और हदीस सुनाता हूं आपको, उसमें यह है कि जिस वक्त किसी को मुसीबत आती है इंसान को, अल्लाह सुबहाना तला फरिश्तों से कहते हैं कि भाई देखो, इस बंदे को मैंने मसलहतन एक मुसीबत में डाला था, एक परेशानी में डाला था, बहुत ही तकलीफ पहुंची इसको। तो फरिश्ते कहते हैं हमारे लिए क्या हुक्म है, फरमाया मैं तुम बताता हूँ इसके लिए क्या करना चाहिए हमें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी तरफ से तुम्हें यह हुक्म है कि इसके नाम जन्नत को वाजिब कर दो। अल्लाह अजर कहता, अजर वो दो इनको कि जिसका हिसाब ही ना हो इसका अजर अता फरमाऊंगा, वो बदला दूंगा इसको जिसको हिसाब ही ना हो। कितना बड़ा बदला मिलता है आदमी को, आप ये देखें कितना बड़ा बदला होगा इसका तकलीफ पर इंसान को, कि जिस वक्त हम पहुंचेंगे अल्लाह के पास रोज़े क़यामत में, जब इंसान को तकसीम किए जा रहे होंगे, तो वो लोग जो उनको मुसीबत आई होंगी, हम मुसीबत में उन्होंने अजर के लिए अपना सामान कर लिया होगा, तो जब अल्लाह पाक उनको उस मुसीबत के बदले में जब दिखाएगा कि ये तुम्हारा इनाम है, तो उनकी तरफ से लफ्ज़ वो सुन लीजिए कि इनाम क्या होगा, उसे वो अजर होगा क्या जिसको वो लोग देख कर ये कहेंगे कि अल्लाह ताला बड़ी गलती होगी, अगर हमारी खालें भी कैंचियों से काटती जाती तब भी वो आसान था हम इस चीज लेने के लिए, बस कुछ भी नहीं था इसके मुकाबले में जो तकलीफ हमें मिली, और ये भी हो जाता था अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी बहुत बड़ी चीज थी। तो अब बताएं कितना बड़ा अजर होगा मुसीबत पे, कितनी बड़ी इबादत हम जाया कर देते हैं। अब यहां एक आपको बात होता हूं, हम मुसीबत किसको समझते हैं, मुसीबत ये तो नहीं कोई आदमी को मार दे, घर लुट जाए, मुसीबत तो है ठीक है ना, आग लग जाए घर के अंदर, दुकानों में आग लग जाए, या बहुत बड़ी चीज हो जाए, बहुत बड़ी सख्त बीमारी आ जाए, ऐसी बीमारी हॉस्पिटल पड़े हैं और ठीक होने का नाम नहीं ले रहे, या तकलीफ बहुत बढ़ जाए, यही नहीं इतना बड़ा अजर के लिए, तो ये भी कुछ नहीं जो अजर बताया गया है। वहाँ अल्लाह की रहमत की कुर्बान जाए आदमी, क्या शफकत है अपने बंदों के साथ अल्लाह ताला की, क्या म्यार रखा है तकलीफ का, आप सोचें क्या म्यार रखा है। जिम्मे जी मगर दो हालतों में इंसान हमेशा होता है, म्यार क्या है, कहते कोई चीज भी, कोई चीज भी जो मेरे बंदे को तकलीफ देगी वो उसकी मुसीबत है, नहीं समझे, कोई चीज भी, यानी क्या आप बैठे हैं, मैंने जल्दी जाना है, मतलब आपने जाना है काम पे, तो मैं चाबी भूल गया अपनी गाड़ी, किधर रखी किधर, तो ये तकलीफ हो गई, और मैंने कह दिया इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना, मुझे ये सवाब मिल गया, ये तकलीफ हो गई, मुसीबत है ये, बस जहन पे इतना इंतशार आ गया, थोड़ा सा अंदाजा लगाए, ये देखिए मुसीबत भी, थोड़ी सी एक छींक आ गई, हाँ छींक आई, तबीयत तो बदली है थोड़ी सी, इस पर आपने फौरन ये कलमा पढ़ दिया, एकदम आपको इनाम मिल गया जो अल्लाह ने बनाया। तो कोई मुसीबत भी किसी छोटे दर्जे भी इंसान की हो, यानी हद तक ये फरमाया कि अगर कोई चीज आपको नागवार गुजरी हो, मिसाल के तौर पर किसी ने लाल कपड़ा लाल कमीज पहन लिया, कोई ऐसा रंग पहन लिया, और मुझे वो नागवार गुजरता है वो रंग, तो मुझे मैंने उसको देखा तो मुझे तबीयत में लगा ये रंग चुभा, अल्लाह ने फौरन अजर मुझे लिख दिया, मैंने कलमा पढ़ लिया। तबीयत में कोई चीज आपके नागवार गुजर जाए जिससे आपको तकलीफ में सांस में थोड़ी तकलीफ हो रही है, समझ में थोड़ी तकलीफ हो रही है, ये नहीं कि बहुत बड़ी बीमारी है, कोई वाकयात है, तो अपनी जगह उसके नाम आते, लेकिन अल्लाह ने कहा कि नहीं, अगर इतने बात भी तो ये कह देगा इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं तुझे सवाब दे दूँ। अब हम क्या करते हैं, देखा एक कलमा ही है ना, कितना बड़ा कलमा है, इसमें क्या है, इसमें इंसान क्या इतराफ करता है कि इसके बाद इन दुनिया ही बदल जाती है, या तो इतने बड़े बड़े हम बीमारियों के तूफान वापरे हों तो कोई जरूर कुछ नहीं, या फिर यह है कि इस कलमे की वजह से थोड़ी सी चीज़ हो जाए तो अल्लाह बड़ा इनाम अता फरमा देते हैं। वजह क्या है, इस कलमे को देखें इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन, बंदा क्या कह रहा है कि वाकई रब तो तू ही है, अगर तूने तकलीफ दी है तो तूने ही दी है, मैं कबूल करता हूँ, ये कह रहा है अल्लाह ताला से, अल्लाह की तरफ रुजू कर रहा है, इन्ना लिल्लाहि, बस तू तो मेरा रब है, मैं तस्लीम करता हूँ उस चीज़ को कि कोई वो तो नहीं कह सकता जो रब को नहीं मान सकता, कि वही कह सकता है जो रब को मानता है, और जो रब को मानते हुए ये बात ना गए लगे ताज्जुब है इस इंसान पर, इसको क्या स्वामित्व। तो सिर्फ ये रियलाइज करा रहे अल्लाह पाक कि तुम्हारा मेरा इतना डीप ताल्लुक है, इतना ग्रेट ताल्लुक है, अगर तुम किसी तकलीफ में मुबतला भी हो जाओ और तुम मुझे याद कर लो तो मैं तुम इनाम भी दूंगा, बदला भी दूंगा, भूलो ना मुझे। सुभान अल्लाह। बस अल्लाह को ये पसंद नहीं कि बंदा मुझसे काफिर रहे। हाँ, जो मुझे नहीं मानते, मुझे नहीं समझते, जिन्हें मुझे कबूल नहीं किया, उनकी बात तो अलग है, लेकिन तुम तो मेरा मुझे मानने वाले लोग हो। इन्ना लिल्लाह, तुम तो मुझे मानने वाले लोग हो और तुम्हें यह मालूम भी है, और तुम यहां तस्लीम किए एक चीज को, मुझे मानते भी हो और तुम एक बहुत बड़ी हकीकत को भूले हुए। वो क्या? तुमने आखिर मेरे पास आना है, तुम इस बात को भी भूले हुए हो। बस ये दो चीजें तुमने अगर याद कर ली कि रब भी तू ही है, देता भी तू ही है, खुशी भी तू देता है, रंज भी तू देता है, हर तरफ तेरे तरफ से आती है, और इस चीज को हम जानते हैं जो कुछ भी आ रहा है हमें तेरी तरफ ही आ चुका, जाना तेरी तरफ ही है, तू हमें अजर से खाली रखेगा तो जरूर बदला देगा। बस इतनी डायलॉग हमारे अल्लाह ताला के साथ हुए, अल्लाह ताला इनामों के ढेर खोल देते हैं इंसान के। तो जिस रब को ये चीज बंदे के साथ तवक्कात हो अल्लाह ताला को, तवक्के लफ्ज करूंगा कि अल्लाह अपने बंदे से ये तवक्क करता हो कि बंदा मुझे इतना भी याद कर ले अगर, और कभी भी ले मुसीबत के बाद, मुसीबत का स्टैंडर्ड ये बता दिया कि अगर तस्मा भी टूट जाए, तस्मा होता है जो जूते का, तस्मा भी टूट जाए, उसको थोड़ी सी तकलीफ हो जाए तो उस पर भी इसने ये कलमा पढ़ लिया तो अल्लाह ताला कहता है उसके लिए मैं जन्नत को वाजिब कर देता हूं। कितना आसान है, ठीक है ना। अब ईमानदारी से बताएं, इसी मजमे में पूछता हूं कि कितनी दफा आपने कलमा पढ़ा होगा। तहज्जुद गुजार भी हैं, कुरान पढ़ने वाले भी हैं, रमजान गुजारने वाले भी हैं, हाजी भी हैं, उमरा करने वाले भी हैं, सारे लोग बैठे हैं, लेकिन कभी भी हमारे जबान से ये लफ्ज निकला, ये कलमा निकला? हालांकि बड़े बड़े वाकयात हमारी जिंदगी में हो रहे हैं, मुसीबतें हो रहे हैं, अगर हम ये कलमा पढ़ देते अल्लाह का वादा है मैं उससे निमल बदल दूंगा, जिस वाक्य पे तू अटका है, जो तूने बात की है उससे बेहतर तुझे जाता था। मिसलमा हम आत्मुमीन थी, तो उनके जब खामिद का इंतकाल हुआ, पूरा वाक्य तो उस वक्त मुझे याद नहीं, लेकिन आपको थोड़ा इशारा दे सकता हूँ। अच्छी उम्र की औरत थी, उनके खामिद का सलमा नाम से इंतकाल हो गया, तो उन्होंने ये कलमा पढ़ा, इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि राजिऊन। देखें आप अंदाजा, देखें आप उनकी यकीन, देखें आप अल्लाह के नाम, देखें अल्लाह पाक ने उसी वक्त नबी पाक ने इशारा फरमा दिया कि तुम इससे अक़द करो, इससे शादी कर लो। नबी पाक से शादी की बात खुद भी हैरान थे क्यों वाक़ हुआ। नबी पाक ने पूछा कि तेरा वाकई मेरे से निकाह हुआ है? तो फरमाया जो मेरा निकाह की वजह है वो सिर्फ यही है कि मैंने ये कलमा पढ़ा था और मेरा यकीन था कि इससे अच्छा नेमत मदर मुझे मिलेगा, इससे बड़ी चीज़ें मुझे क्या मिल सकती है। वजह क्या है कि जितनी भी आसान चीजें हैं अल्लाह ताला हमें देना चाहता है, हमारे जहन ने और नफ्स ने उसको फरामोश कर दिया है। मैं इसलिए कहा आपसे पहले कि कौन सा वक्त है हम मुसीबत में ना हो, थोड़ी मुसीबत आती नहीं आती, घड़ी का टाइम आप चेंज कर रहे हैं, टाइम चेंज नहीं हो रहा, तकलीफ तो हुई ना दिमाग में। अल्लाह कहते हैं इस मुसीबत पर अगर ये कलमा पढ़ देगा मैं तुझे अजर वही दूंगा। वजह क्या है कि अल्लाह चाहता ही है बंदे से, अल्लाह चाहता कि एक सेकेंड भी ऐसा ना गुजरे कि तू मेरे साथ ना हो। सुभान अल्लाह। जहनी तौर पर सिर्फ ये नहीं कि नमाज के अंदर तू सजदा कर रहा है, रुकू कर रहा है, मुझे याद कर रहा है, या तवाफ करते मुझे याद कर रहा है, या सही करते मुझे ताव याद कर रहा है, ये तो सभी करते हैं। अल्लाह कहता है बंदा तो मेरा वो है, बंदगी तो इंसान की वो है कि खुशी और गम हर हालत में, हालांकि गम बहुत बड़ी चीज़ है। आप देखें किसी को कोई मर जाए, अजीज मर जाए, बच्चा मर जाए, कितना बड़ा गम है इंसान के लिए। तो तब को आदमी कह सकता है, उस वक्त तो आदमी कह भी देता है भाई ये कभी निकल भी जाते हैं, और बहुत उस वक्त भी नहीं निकलते बल्कि मातम शुरू हो जाते हैं, उल्टी सीधे हरकतें शुरू हो जाती हैं, उल्टे सीधे स्टिंग शुरू हो जाती हैं, या मतलब उसको किसी और तरफ ले जाते हैं हम उन चीज़ों को। हालांकि एक कलमा है ऐसा कि हम तसव्वुर कर लें, बस अल्लाह को याद कर लें। मकसद अल्लाह का यह है कि तुम खुशी हो या गम हो, किसको याद करो? अपने रब को याद करो। एक सेकंड भी तेरी जिंदगी कैसा ना गुजरे कि तुम मुझे याद ना करो। बोला जिक्रुल्लाह है अकबर, तभी तो अल्लाह पाक कहते हैं कि मेरा जिक्र तो बहुत बड़ी चीज है। वालिम तू और ऐसे ऐसे मौके पे अल्लाह ताला याद कर, उस इंसान को जोड़ रहा है जो तो ठीक है। जैसे हम बैठे हैं आज शबे जुम्मा है, सो अल्हम्दुलिल्लाह मारशूम नहरें रहमत की, फजल, उसका करम, फरिश्तों की हजूम, इनामात, बख्शिश, जन्नतें, और हमारे दरख्त लगेंगे जन्नतों के अंदर, ये सब कुछ मिलना है हमें, ये मिला अल्लाह ने दिया है, दे रहा है, ठीक है ना। तो हम उसके उसके शुक्र, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, ये तो एक माहौल है, ठीक है। लेकिन अल्लाह कर, ये तो एक चीज़ है, मस्जिद में तू आ गया, मैंने तुझे भेज दिया, जिक्र करा लिया, ऐलान भी हुआ मस्जिद जिक्र होगी, पता भी मस्जिद का जिक्र होता है, आप आ भी गए और आदत भी पड़ गई आपको। कहता कमाल ये नहीं है, कमाल तो ये है कि तू जा रहा हो, तेरा टायर में पंचर हो जाए तो बजाय तू गाली निकाले उस पहिए को या गाड़ी को, और गलत कस्म के लफ्ज़ जो अंग्रेज अक्सर बोलते हैं तो जबान में चढ़े हुए ना गंदे लफ्ज़, फौरन तू ये बकवास करे तो उस वक्त तू ये क्यों नहीं कह देता कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तेरा जिक्र भी गायब हो गया, तेरा सब कुछ है। मैं तो चाहता हूँ याद तू उस वक्त कर जिस वक्त तू मुझे भूला होता है। सुभान अल्लाह, क्या अल्लाह की शान और रहमत है। देखिए यही नहीं कि याद करने के वक्त मुझे याद कर रहा है, वो तो सब याद करते हैं, चाहता तो ये होंगे जो भूलने वाला वक्त हो जिस पर सब भूल जाते हैं, तैश में आ जाते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उस वक्त तू मुझे याद करके देख, ये इनाम तो कुछ भी नहीं, जो इनाम उस वक्त मैं तुझे अता करूंगा। मेरे भाइयों यही चीज है कि अल्लाह सुभान व तआला जो तकलीफें देता है, यहां भी एक नुकता सुन ले, हम तो डफर है ना, डफर करता हूं अपने आपको, अपने आप को कह रहा हूं, हमें कौन कहां तकलीफ आनी, हमें कहां तकलीफ दे अल्लाह पाक। अल्लाह पाक तकलीफ तो अपने महबूबों को देता है, क्योंकि उसको पता है कि जिसमें अपने महबूब को जितनी तकलीफ दूंगा उतने मेरे तक पलटेगा, मैं चाहता हूं कि इसके दराजात इतने बुलंद हो जाएं जब मेरे पास है, क्योंकि मैं इसे प्यार करता हूं। और जिसको जितनी तकलीफें पहुंचती हैं, याद रखें ये उसकी महबूबत की निशानी है, उसकी मोहब्बत की निशानी है। हाँ, अगर वो इस तरीके से चल रहा है जिसका बताया गया है, आपका कायनात के नक्शे को देख लें, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके आखिर तक कब तहें देख लें, किसको तकलीफें ज्यादा पहुंची, उठाएं फरिश्ते अंबिया की फैसूस हैं, कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, जितना कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंची, किसी नबी को इतनी तकलीफ नहीं पहुंची। क्यों? आप तो हबीब थे, ये तो कायनात आप ही के वजूद में आई, सितारे आपके लिए बने, चांद आपके लिए सजे, सब कुछ वलमा खलक आए, ये तो ये हर चीज जितनी तखलीक हुई है तुमने अपने महबूब के लिए की, तो उसको तो ऐसा होना चाहिए था कि जैसे कि तस्वर भी नहीं कर सकता। हमारे स्टैंडर्ड तो ये है ना, जो सबसे ज्यादा महबूब होगा वो तो फूलों में झूम रहा होगा, वो तो आखिरत की बात है। जिंदगी देखी नबी, स्टोरी चलती है मक्के से, स्टोरी चलती है मक्के से, खत्म नहीं हुई, और खत्म कहां होती है? करबला पे आके खत्म होती है, करबला तक जो स्टोरी चलती है आजमाइश की नबी, क्योंकि तारीख नहीं मिलती कि इतनी बड़ी तारीख हो आजमाइश की। बस वो फारान की चोटी से जब ये चांद चमका और उसने कहा कि मुझे मानो, मैं रसूल हूँ, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, वहां से जो तूफान शुरू हुआ, चलता हुआ देखें आप जिंदगी में, एक ही एक दिन आप देख रहे हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, खुद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सारे ताइफ में जो मेरे साथ गुजरा, मेरी जिंदगी में ऐसा वाकत नहीं गुजरा जितना जुल्म वहां मेरे साथ हो। यानी ये एक हिस्ट्री है ऐसी कि किसी आदमी को आप मारना शुरू करें, किसी इंसान को आप पत्थर मारना शुरू करें, लेकिन हो नहीं सकता कि उसके कहीं इस मुकाम पे पहुंच जाए कि खून निकलते निकलते उसके जो जूते हैं वो खून से भर जाएं। उठा के देखिए ताइफ की हिस्ट्री, नबी पाक क्या था, इस कदर पत्थर मारे गए कि आपके नालायन शरीफ जो थे खून से भर गई थी, कोई जगह ऐसी नहीं थी जिसपे आपको पत्थर ना मारे, और पूरी कायनात हिल गई थी, फरिश्ते आ गए पहाड़ों को टकाने के लिए, जीव कहते मैं एक पल मार के उनको तबाह कर दूं। सुभान रहमतुल्लाह अलैहि, जुबान से क्या निकला, एक शख्स भी अगर यहां मुसलमान हो जाए तो मेरा सब कुछ दर्द खत्म हो जाएगा। उसकी उम्मत है, उस दर्जे भी अल्लाह को याद कर रहा है, नबी था ना, तुम्हें कैसा दर्श उसने दिया कि जो महबूब था कहां गया, और एंड जाके कहां होता है फिर पूरी जिंदगी में आप क्या कैसे मुकाम को देख सकता है। अल्लाह कि एक तो सबसे ज्यादा मोहब्बत आपको फातिमा ज़हरा से, उनके बच्चों से, और सबसे ज्यादा नक्शा ही वहां, जब भी जाओ तो भूख नंग प्यास, बच्चों के पास ना दवाई के पैसे ना कुछ, जबानें बाहर निकली, पानी तक नहीं, तो क्या फरमाते थे आप, अपनी जबानें ला मुबारक जबान को हसन हुसैन के मुंह में डाल देते थे, वो चूसते रहते थे, जन्नत के नहरें चल पड़ती थी वहीं से। हदीस है, जिसके घर के बेटी घर वो आ रही है कि आप दुनिया को दे रहे हैं बांधे, मुझे कुछ दे रहे हैं, तेरे लिए बांधे नहीं है, तेरे लिए अल्लाह का जिक्र है। ये नबी की साथ है, क्यों मुकाम क्या था आपका, महबूब रब्बिल आलमीन, औलिया अल्लाह की जिंदगी उठा के देखें आप, औलिया अल्लाह की जिंदगी, तो मैंने अपनी जिंदगी में देखा है अल्लाह के बलियों को, कोई नक्शा नहीं होता वहां मेरे भाई। ये जो है हकीकत कि जितने अल्लाह के यहां महबूब होगा बंदा उसी ज्यादा मुसीबत, हम तक पता नहीं क्या हमने गुनाह किया हम पे मुसीबत आ गई, पता नहीं क्या किया, यानी हमारे लफ्ज देखें, काश कि हम समझते कि बंदगी क्या चीज है, इसी जबान से कह देते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने कहा ना मजमू कह रहा हूं, मजमू कह रहा हूं बात कि कितनी दफा, मैं खुद ही आपके साथ कितनी दफा हमने मुसीबत ये लफ्ज बोला होगा, आते ही नहीं याद, आते ही नहीं याद मुसीबत, टायर पंचर हो तो अल्लाह याद नहीं आता, आधे से याद आती है, ए डबल डे क्या हो ए याद आता है, मेंबर हूं या नहीं मेंबर यार, किसी उसको बुलाऊं या उसको बुलाऊं, या इसके वो याद आएगा, उसको ये याद नहीं, मतलब तेरी है दी हुई गाड़ी, तू अब है, तूने पंचर की है, तेरी तरफ जाना है, फिर करने के बाद जो कुछ हो गया हो गया, और उसके बाद जो सुकून उतरता है इंसान पर, सबसे बड़ा ताबीज है ये तो, सबसे बड़ी रुकैया है जो अल्लाह पाक ने दिया, मुसीबत में आदमी घबराता है, जिन्नात भी आते हैं, जादू भी आता है, परेशानी भी आती है, भूख भी आती है, नंग भी आती है, औलाद भी खराब होती है, बीमारी भी आती है, कैंसर भी होता है, हर कुछ होता है इंसान के साथ, होना है होता है, जिंदगी इंसान में होना है, लेकिन ना कहता तू मुझे क्यों भूल गया, किसकी तरफ तू चला गया, पलट मेरी तरफ, तुझे याद नहीं कि जिंदगी दुनिया कायम ही मेरे जिक्र पर है, याद कर मुझे, कहे हमने तेरी तरफ जाना है, अजर हमने तुझसे लेना है, हमें कोई सरोकार नहीं किसी से, ये कलमा है इन लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तस्कीन आ गई, मुझे तो बड़ा मजा आ गया इस पास, आपको नहीं आई कितने गम छट गए हमारे, और ये खाली खोली, अभी तो मैं इनामात की आपको लिस्ट बताना शुरू करूं तो खत्म ही ना हो हदीसें, इनामात अल्लाह ने रखे कितने तकलीफ पे देने के लिए, एक कलमा याद कर लो दोस्तों, एक बस अपने रब को ना बोलो, खुशी में भी ना बोलो, खुशी में नहीं बत्तियां जलानी शुरू कर दो, ये केक काटने शुरू कर दो, फलां करने शुरू कर दो, ये सब अल्लाह को भूल जाने वाली चीज है, अल्लाह सख्त नाराज होते हैं कि खुशी मैंने तुझे इसलिए दी थी कि तू इस काम पे लगा दे सब चीजें, बच्चा पैदा हो गया तो लड्डू बांटना तो शुरू कर देते हो, लेकिन कभी यह है उसका शुक्र का अदा करने का जो तरीका अल्लाह ने बताया कभी वो अदा किया आपने, शुक्र को वैसे अदा करो और गम को जैसे मैंने बताया वैसे, यानी दोनों खुशी और गम के अंदर आए कहां से, अल्लाह की तरफ से, सबसे पहले तो अल्लाह की तरफ रुजू करो मौला, ये खुशी तेरी तरफ से आई है, देखें ईद, ईद हम कहते हैं ईद, तो सबसे पहले ईद हम क्या मनाते हैं, क्या करते हैं सबसे पहले ईद पे काम बताएं, सूरज निकलने से पहले पहले हमारा काम क्या होता है, अल्लाह के पास आकर दो सजदे कहते हैं, शुक्राने के अल्लाह ताला शुक्र है तूने हमें ये खुशी, ये कहते हैं ना सब, उसको ईद कहते हैं, तो सारी जिंदगी में ये है कि जब खुशी हो जाए तो सबसे पहले क्या है अल्लाह के सामने सजदे हो, शुक्र करो उसका, ये खुशी तूने दी है मेरे मौला, और दायमी खुशी बन जाएगी, हमेशा की खुशी बन जाएगी, उस पर इनामात आने शुरू हो जाएंगे, और हम आए तो गंदे लफ्ज जबान से ना पुकालो, जिसकी आदत हमें पड़ गई, फजूल बातें समाज से मत निकालो, कोई कलमा ना पढ़ो सिवाय इसके जो अल्लाह ने बताया कि अल्लाह हम तेरे हैं, तेरी तरफ जाना है, और हमें भलाई अता फरमा, यार से मुसीबत है कुछ भी नहीं, क्या है टीबी परेशानी, मुसीबतें परेशानी जी कुछ भी, और फिर स्टैंडर्ड ये है कि हर वक्त मामला पेश आता है, अभी मैं लिख रहा हूं कलम, कई दफा होता है लिखा हुआ ओ पेन कहां गया, तकलीफ हो रही है जहन में, साथ ही कलमा पढ़ दूं, सुबहान फरिश्ते उतारेंगे तेरा तो काम बन गया उस्ताद, ये पेन अल्लाह ने खुद छुपाया था इसलिए कि तेरे दर्जा बुलंद करना चाहता था, एक बच्चा किसी का नाफरमान हो गया हिस्ट्री में था काम चल रहा है, तो बच्चे ये नहीं लाठी लेकर पड़ जाए गाली निकालना शुरू कर दे और तूफान मचा दे और जादूगरों के पास जाए जी फला नहीं, बल्कि क्या फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करे, जब वो बदमाशी करे अल्लाह की तरफ रुजू करके कलमा पड़े अल्लाह फौरन फिर कहते मैंने था मैं मेरा तावेदार बंदा है, बंदा तेरा पलटेगा, इससे ज्यादा जो अदरफ होगा तुमने मुझे याद कर लिया इस मामले पर, अपने रुख को बदल दे, हम यह मस्जिद जो हम करते हैं ना इसका मतलब मेरे दोस्तों यही है, खालिस ये तजिए की मजलिस है, अपने आप को हम क्या करते हैं वो सबको दोहराते हैं, बस अल्लाह को ना भूलो, ये सूफियों का दर्स तो यही है ना नक्शबंदी के, अल्लाह को ना भूल, एक सेकंड में अल्लाह को याद करना इतना बुलंद हो जाएगा जिसका तू तसव्वुर नहीं कर सकता, और तेरा भूल जाना इतना डुबा देगा तुझे जिसका तू तसव्वुर नहीं कर सकता, हम चंद इबादत को ना समझेंगे बस यही काम आएगी, काम ये आएगा कि अल्लाह को ना भूलो, बस ये सबसे बड़ी चीज काम आएगी, कोई पता नहीं किस वक्त का अल्लाह को याद किया इन तमाम इबादत से ऊपर निकल जाए, ये बता रहा हूं आपको, ये देखें हदीस से तीन चीज लाजिम हो जाए जिसपे एक
चाबी गुम हो जाए आपकी, या कोई एक थोड़ी सी बात पे तकलीफ हुई, फौरन मतलब ये है कि आप घर गए और आपने देखा कि जनाब मैंने यहाँ कुर्ता रखा था किधर चला गया, या पानी आपने खोला तो बजाय गर्म पानी के ठंडा पानी निकल आया, या कोई ऐसी चीज़ रोज होती है दिन में होती है काम, कपड़ा मैंने ये पहना था ये तैयार नहीं, इस पर इस्त्री नहीं हुई, ये हो गया, बोला वही घड़ी मेरी किधर गई, ये तो रोज़ की बात है, मैंने जल्दी जाना था या 5 मिनट लेट हो गया, नमाज में आते आते हो जाते, बस अलग है, इतनी सी भी तकलीफ में जब तुझे पहुंचे तो किसको याद कर, मुझे याद कर, और इस कलमे को मैं तुझे देता हूँ, इस कलमे से याद कर लिया कर, मुझे ये कलमा महबूब है, ये ना और कोई बता देता अल्लाह पा, याद करने तो किस कलमे से, कौन से कलमे है, इन्ना लिल्लाहि, हम समझते हैं जी उस वक्त पढ़ने जब कोई मर जाए जब किसी मरने की खबर सुने ना उसी वक्त पढ़ सकते हैं, यू की बात है। तो मेरे भाई महबूब लोगों को चीजें दी जाती हैं, सबसे पहले तकलीफें आए और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात हो तो समझ जाए अल्लाह के करम बड़ा करम आना शुरू हो गया हमारे पास, अब उसकी रहमतें आ रही हैं, कोई चीज़ हमारे डिले हो रही है, किसी चीज़ में रुकावटें आ रही हैं, किसी चीज़ में परेशानी हो रही है, तो मातम ना शुरू कर दो करना, ये तो और लोग करते हैं वो जिस तरह, ये तो क्या है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को याद करने वाला मामला है, क्या निशानी है महबूब नहीं है, क्यों आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है इमाम अल-अंबिया की मिसाल आपके पास है, कहाँ ख़त्म हुई बात निकल के, वाह देखें आप फरान की चोटी से ख़त्म होती है करबला के अंदर आके, कि किस कदर तकलीफ पहुंची नबी पाकसम को, इबन अब्बास ख्वाब देखते हैं करबला की रात पर कि नबी पाकसम के बाल बिखरे हुए हैं, आपके बालों पे खाक लगी हुई है, दाढ़ी मार हुई खाक लगी है, और आपके हाथ में एक बोतल है, तो इबन अब्बास पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है आपके पास, बहुत परेशान हाल है, आंखों से आंसू जारी हैं, फरमाइए अभी मैं करबला से आया हूँ, तमाम लोगों जो करबला में शहीद हुए उनके खूनों को जमा करता रहा, थी बात है ये रवायत है मेरे भाइयों, ये किसकी आजमाइश हुई जिनको अल्लाह ताला बहुत ही महबूब करते थे, तो अल्लाह के जो औलिया हैं, जो दोस्त हैं, महबूब हैं, या जो भी महबूब है अल्लाह को पसंद करता है, कुछ स्टैंडर्ड है ना किसी का, तो भाई ये बस पसंद थे, ये बस जिस पे तकलीफ के पहाड़ आने शुरू हो जाए और तकलीफ में अल्लाह को याद कर रहा है, अल्लाह को भूलता नहीं, वो औरत या मर्द समझो मकबूल आदमी है वो, अल्लाह का महबूब आदमी, गुरबत में बादशाहत होती है उनके पास, परेशानी भी खुश होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जख्म लगते हैं अल्लाह और जख्म के मरहम ऊपर से लगते हैं अल्लाह की तरफ से, दुनिया हैरान होती है कि भाई इनके साथ हालात क्या जा रहे हैं, इनकी चीज़ें क्या हो रही हैं, इनकी एक भी परेशानी दूसरी परेशानी आ रही है, दूसरी बात तीसरी आ रही है, वो तो जनाब बुरा हाल होता है यार, बस नमाजा भी पढ़ते हैं यार, रोजे भी रखे हैं हम तो, उम्र भी करके हैं यार, हमारे काम ही नहीं हो रहे, एक ये कलमा है, एक कलमा इन लाही वाज, नहीं समझे बात मेरी, बड़ी अच्छी बात है आज की रात अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस पर हमेशा हम मैं भी रहा भी इस पर सभी मुसीबत में ना घबराए, घबराता तो है आदमी, इसमें करता घबरा नहीं सकते हम, बशर हैं कोई फरिश्ते तो नहीं ना, घबराएं लेकिन अल्लाह की तरफ जाए, जैसे माँ को थप्पड़ बच्चे हैं ना तकलीफ आती तो कहाँ भागता है, आया माँ ने थप्पड़ छप्पड़ मारा तो फिर भी उसके पास जाता है नहीं, थप्पड़ माँ ही मारी है, ठुडे मारी है, चल भाग जा, और फिर जाकर उसी चिपके उसी के साथ रो रहा है, ये तो बंदा है कि तकलीफ उधर से आ रही है वहीं जाके इंसान रोता है, इसका नाम तो मोहब्बत है अपने रब से, अल्लाह की इससे मोहब्बत, तो फिर माँ क्या करती है, जब जाकर चिपकता है वही माँ जो मारा ना उसको ठट्टे मारे हैं थप्पड़ मारे मुंह लाल किया वही चूम रही होती उसको, पकड़ पैसे जा ले आ जाके टॉफी खरीद ले, शैतान बाज नहीं आता, प्यार भी कर रही है पैसे भी दे रही है, पहले मारा था, अल्लाह ताला जैसे कहते हैं ओ नालायक तू गुनाहगार तो है शैतानी करता है, अब तू मेरे पास आ गया, अब मैं तू सीने से लगाता हूँ, चल जी सारे सारे नाम तेरे, पिछले ही माफ अगले ही तेरे माफ कर देता हूँ, चला जा, वो तो 70,000 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला आदमी है, यही वजह है हमारी परेशानी है कि हम खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हम बड़े हैं जी तीरखा, हम ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा, फलां करेंगे तो ये हो जाएगा, इससे हमारा ये मसला हल हो जाएगा, अल्लाह के बंदे छोड़ दो सब कुछ, किसकी ज़ात पर, अल्लाह की ज़ात तूने दिया महाराज, तेरे अख्तियार में तो खाना तू चला रही है, ऐसे हो ही नहीं सकता था, आराम से सोएं लफ्ज़ पढ़ें सोएं, बस फैसला तूने ही करना है, लफ्ज़ पढ़ते रहें अल्हम्दुलिल्लाह, इस कलमे को जारी रखें, अल्लाह की तरफ से फैसला होने शुरू हो जाए, करेंगे भाई इंशाल्लाह, चलें आप दुरूशी पढ़ें, अल्लाह को याद कर लें, अल्लाह का जिक्र किया करें, अल्लाह को मत भूलें, बहुत बड़ी चीज़ है, बेवकूफ़ों कितनी मिन्नतें करता हूँ मैं आपकी, कैसे किसी मिन्नत, क्यों कभी आते ही नहीं, ना सुबह भी बैठते हैं जिक्र में, ना शाम को, क्यों नहीं समझते इस चीज़ को, जिक्र बहुत बड़ी चीज़ है, क्यों अल्लाह से ताल्लुक तोड़ते हो, ये पैसा बड़ी चीज़ नहीं, ये दुनिया बड़ी चीज़ नहीं, ये सब की सब ذرے کے برابر بھی نہیں ہے. ایک گھڑی جو انسان بیٹھ کے اللہ کو یاد کر لیتا ہے وہ سب سے قیمتی گھڑی بن جاتی ہے. نہ کوئی نیند پیاری ہے نہ کوئی دکان پیاری ہے. ضرور کاروبار کرو, دکان کرو, نوکری کرو, لیکن اس سٹائل سے کرو کہ اللہ کی یاد بھی ختم نہ ہو. اللہ کل آپ سے پوچھے گا کہ تم نے دکان کی وجہ سے میری مجلس میں نے وہاں, یہ کس نے مجلس قائم کی ہے مجھے بولو. صبح مجلس کون قائم کرتا ہے؟ ہمیں کون بیچتا ہے؟ مسجد کس کی ہے؟ فجر کس کی ہے؟ تو کہاں ہوتا ہے تم لوگ؟ اتنا بڑا اہتمام کیا ہوا ہے اللہ نے اپنے ذکر کی مجلس کا, جس کا کوئی پتہ بھی نہیں تھا. پتا نہ کسی کو نہیں پتا ذکر کیا ہوتا ہے. فجر کے بعد کون, آج تک میں نے سنا ہے ہلکا لگتا ہوا ذکر کا. کس نے انتظام کیا ہے؟ تو کہا تھا میں دکان پہ تھا جی. تو کہا تھا جی مجھے نیند بہت آ رہی تھی. تو کہا تھا جی اور میں تھکا ہوا تھا جی. تو کہا تھا جی میں ٹیکسی چلا رہا تھا. اللہ کہتا یہی تھا تیرے لیے سب کچھ, میں کچھ بھی نہیں تھا. کرو لیکن کیا ہے, اس وقت کو ضائع نہ کرو جو 15-20 منٹ صبح اللہ کے ذکر کے ہیں. اٹھ کے آ جاؤ بستروں سے, دکان سے آئے تو سیدھے آ جاؤ, بے شک اس میں سو جاؤ. اللہ تعالیٰ کیسا میرا پیارا بندہ ہے, وہاں سے تھکا ہوا ہے, آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور ذکر کر رہے ہیں میرا, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرے گا اس انسان کے لیے. وہ کیا انسان کبھی ایسا رہ سکتا ہے کہ اس پہ مصیبت پہاڑ ایسے اللہ اس سے ناراض ہو جائے؟ مجھے بتائیں, سوال ہی پیدا نہیں. ایسے انسان سے اللہ پاک کیسے ناراض ہوں گے؟ اپنے ہاتھ میں نہ لو اپنی زندگیوں کو, بلکہ اللہ کے ہاتھ میں دے دو. میرے بھائیو اللہ کے اختیار میں, جب تک دینے سے کیا ہوگا, اپنی مرضی سے وہ تو صحیح ہے. صبح اٹھے جناب نہا دھو کے اور بہت کنگھی شنگی کر کے اور خوب پرفیوم سے رکھ کے اور بڑا منہ چوا کے تیل شیل لگا کے دور پہ کھڑے ہوئے. اللہ کا یہ کیا بات ہے, یہ تو فرض ہے, تو جھنڈا میرے لے گیا ہے, تو اس میں کیا کمال ہے؟ کمال تو یہ تھا اگر تو اشراق کے ذکر میں بیٹھ جاتا, تب جانتا تم اس سے محبت کرتا ہے, تم نے کچھ قربانی دی ہے. یہ تو فرض تھا. اب کھا پی کے روٹیاں اور جناب منہ ہاتھ دھو کے اور خوشبو لگا کے اور بڑا پہن کے صاف ستھرے کپڑا امام شمایا کھڑا ہو کر نہیں, اس میں کیا نخرے کر رہے, اپنے آپ کو ولی سمجھ رہے تھے. ولی تو وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی نیندوں کو خراب کیا, اپنے وقت کو خراب کیا, سب کچھ خراب کرنے کے بعد وقت کو ٹالا, دنیا کو ٹالا, آ کے میرے ذکر میں بیٹھ کے مجھے یاد کیا. تجھے دوں گا یا ان کو دوں گا؟ چل باغ یہاں. یہ تو تھی ڈنڈے کی وجہ سے پڑ رہا ہے کہ ڈنڈا نہیں پڑے گا تو تجھے اندر کر دوں گا میں. اللہ تعالیٰ کا یہ تو قانون ہے نہ, تو فجر میں دیکھتے حال کیا کرتا ہوں میں, مارتے مارتے فرشتے تجھے ٹھیک کر دیں گے. کوئی آسان نہیں, نماز پڑھنے کا کوئی آسان نہیں ہمارا. ایک یا تین مار لیے ہم صبح کو نماز پڑھ لی, یہ تو ڈنڈے سے پڑھتے آدمی, کیسے پڑھنا پڑے. وہ تو بہت ہی بےغیرت انسان ہے جو اللہ سے بھی نہیں ڈرتا, اس کا کیا کہہ سکتا ہے؟ وہ تو بالکل نڈر ہو گیا, بےغیرت ہو گیا آدمی. لیکن ایک جو آ گیا وہ کو تیر تھوڑی مارا ہے, اس کو ڈرتا ہوا ہے اللہ سے, بھی نہیں ہے کہ بھائی مارے گئے فرشتے ماریں گے اور یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا, تو خوف لے کر آیا ہے. اور جن کو خوف بھی نہیں وہ تو بےغیرت آتے ہیں, وہ تو اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, ان کا تو کوئی حساب ہی کوئی نہیں. یہ لفظ ہی کام ہے بےغیرتی کا, اس سے بڑی لفظ ہونا چاہیے ان کے لیے. اور بتائیے ان کو ہے ہی نہیں احساس, وہ جانوروں سے بدتر ہیں. جیسے قرآن نے کہا یہ لوگ تو جانوروں سے بدتر ہیں جو اللہ کا خوف بھی نہیں رکھتے, لیکن جو خوف سے بھی آ گیا اس نے کوئی بڑا کام نہیں کیا, اس نے کیا تیر مارا ہے. اللہ کہتا ہے مزہ تو اس وقت ہے جن چیزوں کو میں نے نفل رکھا ہے, جس میں میں نے ڈنڈا نہیں رکھا, وہ خالص میری محبت کی وجہ سے میرے پاس آیا, تو کمال تو یہ ہے میں اس کو پیار کرتا ہوں. پھر ایسے کرو نا عبادت, پھر مزہ ہے. آئیں گے صبح, صبح جمعہ ہے, بننا چاہیے ہلکا یہاں الحمدللہ اللہ کے ذکر سے. اپنی قربانی ہو, یہ قربانی دینی پڑے گی, نیند بھی آئے گی, دل بھی نہیں کرے گا, شیطان بھی پکڑے گا, مستیاں بھی آئیں گی, بہت کچھ آئے گا, دکان کا بھی خیال آئے گا, وہ تو بھی آ جائے جہاں نیند آنی ہے. نیند بھی کس کی ہے؟ کل اللہ نوکری لے لے ہمارے سے, ہم کیا کریں گے؟ نہیں پتا. ایک شخص کو دیکھا رو رہا, نہیں مسجد کی بات, اسی مسجد کی بات کرتا ہوں میں, کیا ہوتا ہوں, بڑے بڑے عجیب لوگ ہیں بھائی. کہتے ہیں جی بس میں بات کیا ہوئی تمہارے سے؟ نہیں بس ہچکی بندی, رو رہا, نماز پڑھا, رو رہا. کہتے جی میں آ رہا تھا اندر تو دو آدمی جا رہے تھے مسجد کے اندر, اب دیکھیں احساس دیکھیں خوف خدا کا, ایک آدمی ذرا لنگڑا کے چل رہا تھا, دوسرا آدمی بےچارا ایسے ہی تھا, اپاج سا تھا, تو میں تیزی سے آ رہا تھا, تو میرے دل میں ایک ناگوار سا خیال گزرا کہ میرے راستے میں آئے جانا ہے, میری نماز جاری ہے, مجھے اندر کیوں جلدی جانے دیتے؟ کہتا وہیں میں روک گیا. کہتے یہ خیال میرے ذہن میں کیسے آیا؟ اللہ کی مخلوق ہے, تو اگر جلدی پہنچ بھی جاتا جماعت میں, لیکن تیرے ذہن میں خیال کیسے آئے کہ دونوں مجھے تنگ کر رہے ہیں, آگے پیچھے ہوئے جا رہے ہیں, چلتے ہی کیوں نہیں تیز؟ ہائے ہائے, کہتا ہے میں تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہو رہی کہ میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں, اگر مجھے اللہ تعالیٰ اس سے بتر کر دے میں کیا کروں گا؟ رو رو کے پاگل ہو گیا شخص. میں حقیقی بتا رہا ہوں, ساری دن کی ثواب اس نے دے دی, ساری عبادت کا ثواب دے دیا کہ اللہ تم مجھے معاف کرے, میں ان دونوں کو ثواب دیتا ہوں میں جو کچھ بھی عبادت کی ہے. میں نے کیسے سوچ لیا, میرے ذہن میں کسی بھی خیال ڈال دیا کہ تیری مخلوق کے بندے ہیں. یہ ہے خوف اور محبت اللہ تعالیٰ سے. بھائی ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں, ہم تو احساس ہی کچھ نہیں, جانور سے بدتر ہم انسان ہیں. ایک خاص یہ چار پانچ نمازوں پہ ہم اتراتے پھرتے ہیں, یہ کیا ہے, کیا ہے؟ کتنی عبادات اللہ پاک نے رکھی ہیں جو ان کے علاوہ رکھی ہیں, جس میں اللہ کی محبت ملتی ہے, وہ کبھی نہیں سوچتے, کبھی نہیں سوچتے. نہ ہمیں مخلوق سے پیار, نہ اللہ کے مخلوق سے پیار. اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب سے زیادہ مجھے اپنے مخلوق سے پیار ہے, اور جو اللہ کے مخلوق سے پیار کرے گا اللہ اسے پیار کرتا ہے. بتائیں, ہم سے تو اتنا بھی نہیں آتا. ایک شخص کے انتقال ہو گئے, شاید پہلے ہی واقعہ بتایا, میں اسرائیل کے شخص تھا, تو فرشتے سے کہہ لیا اس کو, اسے پکڑ کے اوپر لے جا رہے ہیں جہنم کی طرف, چالا تھا اوپر راستے میں. اللہ تعالیٰ نے پوچھ تو صحیح, ذرا کوشچن پوچھے کہ زندگی میں تم کوئی نیک کام کیا ہے؟ اتنی لمبی تو زندگی دی تھی 90 سال, اسی کا نیک کام تم سے ہوا؟ ہوا تو کچھ نہیں کام. کہتے چھوڑو جی, نیکی میرے مقدمے نیکی کہاں تھی, میں تو زندگی ختم کر رہا ہوں, چلتا رہا. کہتے ایک وعدہ نہیں, بتاتے شرم آتی, اس کی کیا قیمت ہوگی بات کی, کیا بات ہے؟ کہتے جی میں کاروبار کرتا تھا تو لوگ مجھ سے ادھار لیتے تھے جی. کہتے چھوڑیں کیا بتانے, ان کو بتا تو سی شاید کم بن جاتے تھے. اس کو نظر ہی نہیں آ رہی تھی انہیں کی. اللہ نے کیا کہا قرآن میں کہ ذرے کے برابر بھی نہیں کی ہوگی, ذرے کے بعد برائی. کتنی بڑی بات کہی اللہ نے قرآن کی, میں وہ تیرے سامنے رکھ دوں گا تو ذرہ ہمارے سامنے نیکی کچھ بھی نہیں ہے. جس ذرے کے بارے میں اللہ بات کر رہے کہ تم اس کو پہچان نہیں سکتے, اس ذرے نیکی کے بدلے میں تمہیں دوں گا کیا قیمت, دیکھیں آپ سبحان اللہ. ہاں ذرے, ذرہ کوئی لفظ ہے ذرہ؟ اللہ واسطہ دے رہے قرآن میں, خدا کے واسطے ذرے والی نیکی کو پہچانو, وہ بہت قیمتی تمہارے لیے ہوگی, وہ تو الگ بات ہے. فلا ذکر اللہ اکبر, جس کو کہہ رہے اللہ تعالیٰ ذکر سب سے بڑا ہے, ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں. اندازہ لگا لیں ہماری قسمتوں کا, ہمیں ہماری ہماری ہمارے ایمانوں کا. اللہ کہہ رہے ذرے کے برابر نیکی نہ چھوڑو, ہم کہہ رہے والا ذکر اللہ اکبر کیا چیز ہوتی ہے, کہ کیا ذکر ہو رہا ہے, کیا مجلس ہے جی, بڑا ٹائم نہیں ہمارے پاس, نہ ہم نہیں کر سکتے. یعنی اکبر کو چھوڑ رہے ہیں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ الحمدللہ گرد و نواح سے لوگ آتے گاڑیوں میں بیٹھ کے کہ فلاں ذکر کی مجلس ہے, یار کیا فرق پڑتا ہے, وہیں فجر کی نماز پڑھیں گے, وہاں ذکر کر کے انشاءاللہ پھر اپنے کاموں پہ چلے جائیں گے. کیونکہ فلاں ذکر اللہ اکبر ہے, یہ تو کسی عبادت کے ساتھ اللہ نے کہا ہے؟ مجھے بتائیں, دو لفظ ہیں رضوان اللہ اکبر, کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی ہے, اور فرمایا اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رضا ذکر سے ہی ملتی ہے, دونوں اکبر ہے. وہ تو ہمیں نظر نہیں آتا, اللہ کہتا ذرے کے برابر, ہمیں اکبر ہی نظر نہیں آتا. ہم باتیں سنیں پھر ہماری حوصل کتب کے, جو جنت جو ہم نے ٹھیکے لیے جنت کے, پتہ جب چل جائے گا. تو وہ آدمی کہنے گا جی چھوڑو جی, پتا فرشتے کہہ رہے ہیں اوپر سے حکم آیا, بھائی کوئی نیکی تو نے کہا جی نیکی ہے, میں کاروبار کرتا تھا تو لوگ مجھ سے آ کے ادھار لے جاتے تھے پیسے. میری ایک عادت تھی, میں جی وہ پیسے میں زور نہیں مارتا تھا, کسی کو تنگ نہیں کرتا تھا, بس مانگ لیے اس نے بہانے مار رہے ہیں, میں کہا چلو یار دے دینا کوئی بات نہیں, تو پھر میں تھوڑا نرم ہو جاتا اس چیز, لینے دینے میں بہت نرم تھا. نہ کسی کے پیسے کھا کے دے دیں گے جی یار دے دیں گے, اب نسے جانے ہیں کل لے لیں یا پرسوں, نہ میرے میں یہ عادت تھی, اور نہ میرے میں یہ عادت تھی کہ جناب دے ابھی دے ابھی. کتنی بڑی عادت ہے یہ مجھے بتائیں, اور یہ عام ہے ہمارے, دے دیں گے جی دے دیں گے, کوئی نشے تو نہیں, نہ جانے باغ تو نہیں رہنا, کیا یار کام پہ لگ گیا تو دے لیتے ہو, پتہ نہیں چلتا. جب ہی کہتے تھے ہمارے حضرت کہ قرض جو ہے نا وہ فرض سے بھی بڑا ہے, کیونکہ فرض میں ایک نقطہ ہے, قرض میں دو نقطے ہیں, انسان نہ لے اور نہ دے, لیتے اس کو پتہ نہیں چلتا, مزے مزے سے لیتا ہے, اور جب واپس کرتا ہے تو پھر اس کو تکلیف ہوتی ہے, اس سے پھر اختلاف بڑھتا ہے. دینے دینے بہت تکلیف ہوتی ہے, لیتے وقت تو پتہ نہیں چلتا کہ میں دے رہا ہوں, جب وہ دینا پڑتا ہے تو بس پھر اس کو چکر آتے ہیں میں دوں کیسے, وہ اس کا ہی اپنے بنا لیتا ہے اس کو. تو وہ کیا کہتا ہے کہ میرے لینے دینے کا جو معاملہ تھا بڑا ہی نرم تھا, جس کا لیا فرم دیا, اور جس کا میں نے مجھ سے میں لیتا تھا جن سے, میں اس پہ روب نہیں مارتا تھا, میں کہتے ہو دے دینا ایک تھا. اللہ کے حکم آیا, کہتے اس کا فوراً اس کا رخ پھیر دو, کس طرح؟ کہتے جنت کی طرف. کیوں جی؟ فرشتے بھی تھے نا پوچھنے والا کہ تاکہ دوسرے کے کام بنے. کیوں جی؟ کہتے اس لیے کہ یہ مجھ سے بڑا ہے, یہ جب لوگوں کو معاف کر سکتا ہے تو میں نہیں معاف کر سکتا اس کو, میں نے اس کو بھی معاف کر دیا.
कोई इबादत है ये? नहीं, हमारे लिए इबादत ही नहीं, ये तो दिन रात का खेल है हमारा। बस जिक्र करा लो जनाब, फिर ये करा लो, बातें करा लो, उम्रे करा लो, लोगों को पैसे से हज पे सब कुछ करने के तैयार है, लेकिन ये जो असल इबादत है ये नहीं। बस इतनी एक सेंस हो जाए ना पैदा हमारे में कि हम अपने अल्लाह को समझ जाए कि उसको राजी कैसे करना है। तो अल्लाह को राजी करना तो बहुत ही आसान है बंदो, हमने तो एक अपना मियार बनाया है, बस ये है चंद चीजें, इस पर हमने राजी करना है। और वो अल्लाह कहता है कि मैं मेरी मर्जी वो कबूल करूं, उसमें हजारों नक्श हैं, उसमें रिया भी है, दिखावा भी है, फ्रॉड भी है, हजारों चीजें हैं जिस इबादत को हमने बनाया ना अपने लिए कि अल्लाह को राजी करने वाला। समझ रहे मेरी बात है? जो बात हमने रखी हुई ना कि हम राजी करेंगे उसमें, वो तो कबूलियत का दर्जा बहुत ऊंचा है उसके लिए, तो वो तो अल्लाह की रहमत है, फजल फरमा दी, तो अल्लाह का हुक्म कर रहे हैं, मान रहे हैं, ये तो अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं। लेकिन ये कि इसको उस दर्जे पर ले जाए अल्लाह ताला, ये आ गई हमारी इबादत, तू बस हमें जन्नत दे दे, ऐसे जूते पड़ेंगे ना वहां, तस्वीर ये तो हुक्म है अल्लाह का मान रहे हैं, इस पर इनाम मिलेगा, तुम्हें हुक्म मान, ना हुक्म मान सजा है। लेकिन इस इबादत को कबूल करना उसका, तो ये तो बड़े मुश्किल, रिया भी है, बकास भी है। हमारी इबादत आप देख लें कि हम हमारे सुबह एक नियत से लेकर आखिर तक पूरी दुकान चलती है हमारी, नमाज कहाँ चलती है, पूरी मजलिसें चल रही होती हैं, पूरे गपशप चल रहे होते हैं, अल्लाह हु अकबर, बस काम शुरू हो जाते हैं हमारा, उधर जाना है, इधर जाना है, ये काम करना है, या फलां करना है, अभी ये भी करना था, ये भी करना, अस्सलाम वालेकुम रहमत, पता नहीं साथ वाले को सलाम कर रहे हैं या फरिश्तों को कर रहे, उसको ये भी नहीं पता था बेचारे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ये भी तौफीक दे रहा है, बहुत बड़ी बात है, हुक्म तो मान रहे हैं अल्लाह का, बड़ा करम है उसका कि मस्जिद में ले आते हैं, ऐसी इबादत भी हमसे करा रहा है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी रहमत से पूरी उम्मीद है अल्लाह ये कबूल फरमा लेंगे। लेकिन असल चीज़ तो यह है कि अल्लाह को राजी करने के दूसरे रास्ते जो हैं, जिसमें अल्लाह ताला का इनकार है ही नहीं, इनकार ही नहीं, उसमें फौरन मानता है, वो क्यों नहीं पकड़ता? अल्लाह की मखलूक को राजी करो, उनसे धोखा ना करो, उनसे बेईमानी ना करो, उनसे अपना तरीका जो है माशरत को बराबर रखो, दुनिया के लोगों के साथ अच्छे मेहमान रखो, जो आपके साथ ज्यादती के लिए आपसे प्यार करो, अखलाक से मिलो, वो आपको थप्पड़ मारे, आपसे मोहब्बत करें, अदले का बदला थोड़ी होता है जिंदगी के अंदर, ये किसने सिखाया आपको आप बदला लें तो वो भी आपसे बदला लें, ये तो है ही, मतलब आपसे ज्यादती कोई कर रहे हैं अलहमद कोई बात नहीं, वो बेचारा नावल उसको पता नहीं है, आप उससे मोहब्बत करें, दिल से लगाएं, सीने से लगाएं, उसकी क्यों बुराई करते हैं? इसका नाम है ईमान और इस्लाम। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे।